खुदावंत के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज मेरे साथ निकाले नए अहदनामा में से इफिसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पांच बाप उसकी 20 और 21 आयत को हम पढ़ेंगे। बहुत जल्द आने वाले सालों में हम इस खत को मुकम्मल कर लेंगे और फिर कोई और किताब आयत बा आयत शुरू करेंगे, जिसमें से हम अपनी बुनियादी तालीमात को सीख सकें। और मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं कि अगर कोई ईमानदार इफिसियों के खत को याद कर ले और आयत बा आयत इस पर गौर करे, तो ये ऐसा खत है जिसमें हमें खुदावंद यीशु मसीह की वो तमाम बातें पालूस रसूल रूह के वसीला से उनको कलीसिया तक पहुंचाता है कि वो कौन है, उनकी क्या हालत है, क्या कुछ हासिल है। तो इफिसियों का खत रूहानी तौर पर ऐसा वो सच है जो कि हर एक ईमानदार को, अगर कोई कोई नए सिरे से पैदा हुआ है, जिसने अभी अभी यीशु को कबूल किया है, तो इस खत में बहुत कुछ है जो सीखने की जरूरत है। इसलिए हम साहिब का, इस बाप का, इस किताब का, इस खत का मुतालिया करते रहेंगे जब तक खुदावंत की पाक मर्जी के मुताबिक हम इसे पूरा नहीं कर लेते। मेरी ख्वाहिश है कि आने वाले साल में हम करंथियों का पहला और दूसरा खत शुरू करें, जिसमें हम कलीसिया की तस्वीर को देखें कि कौन सी कलीसिया में वो बातें हैं जिनसे कलीसियाओं में क्या पड़ता है, फसाद है, और बहुत सी बातें हैं जिनसे हम कलीसियाई फसाद को दूर कर सकते हैं। इसलिए बच्चों तमाम गौर से सुने, पांचवा बाप उसकी 20वीं आयत में यूं लिखा है, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबिया रहो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हमने पिछले दिनों से इस बात पर गौर करना शुरू किया है कि बहुत से हवाला जात में, जैसे कर सकते हैं कि जब मैंने इसका मतालिया किया कि यीशु के नाम से, यीशु में, यीशु के वसीला से या यीशु में, तो सौ के हवाला से हमें क्या मिलते हैं, हवाला जात मिलते हैं। और पालूस रसूल जब भी यीशु मसीह का नाम लेता है, चाहे वो अगरपा बादशाह के सामने जंजीरों में झगड़ा हुआ है, चाहे वो जहाज पर है और तूफान आया हुआ है और वहां पर वो कहता है कि यीशु का नाम है जिसके लिए मैं अपने घर से और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकला हुआ हूं, और अगर वो कहीं जाकर तालीम देता है तो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम वो क्यों कहता है, क्योंकि नाम में बहुत ज्यादा अहमियत पाई जाती है। और हम सब ईमानदारों को भी इस नाम की कुव्वत को और ताकत को समझने की जरूरत है, और इस नाम को वो दर्जा, वो इज्जत देने की जरूरत है जो कि बाइबल मुकद्दस कहती है हर नाम से ज्यादा आला नाम है। कोई भी और नाम जमीन पर नहीं बख्शा गया कि जिसके वसीला से बनी नू इंसान की गुनाह की उस कैद में से रहाई हो सके। तो क्या कहा गया है, सब मेरे साथ इस आयत करो, आयत को कहें, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। किसी और नाम के वसीला से नहीं, किसके नाम से, यीशु मसीह के वसीला से। तो जब जब पालूस रसूल खुदावंद खुदा यीशु कहकर बात करता है, तो उसके पीछे मकसद क्या है, यही मकसद है कि उसके नाम से। बच्चों तवज्जो से, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा, ये नहीं कि एक दफा, दो दफा, तीन दफा, हमेशा हमेशा जो कुछ भी मांगो किसके नाम से, यीशु के नाम से। और उसके नाम को अपनी जिंदगी में अपनी पहचान बनाकर इस्तेमाल करें। बहुत दफा हम यीशु मसीह के नाम को सिर्फ ईमानदारों के दरमियान लेते हैं, और दूसरी जगहों पर जब हम होते हैं तो हम उसका नाम लेना पसंद नहीं करते। हो सकता है कि हमें चाय ना मिले प्याली में, हो सकता है कि हमें खाने को खाना ना मिले, हो सकता है कि हमें कोई कह दे कि आप मसीही हो, तो फिर हम झिझक झिझक कर कहते हैं। याद रखें, यीशु के नाम से हमारी बरकत जारी होती है, और यीशु के नाम से हमारी क्या है, पहचान है। अगर हम यीशु का नाम नहीं लेंगे तो कोई समझ सकता है कि हम सिख हैं, कोई समझ सकता है कि हम बौद्ध मजहब हैं, कोई समझ सकता है कि हम मुस्लिम हैं। सो हर एक मजहब में नाम बहुत ही आला अहमियत रखता है, इसलिए हमारे नाम से ही हमारी पहचान है। अगर हमारे नाम के साथ फैसल मसीह लगा हुआ है तो इससे पता चल जाता है कि हम किसके मुतहद या किसके मानने वाले हैं। इसीलिए पालूस रसूल कहता है कि सब कुछ इस तरह करो, यीशु के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करो, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबेर हो। मसीह के खौफ से, मसीह के डर से, मसीह की इज्जत से, उसके एहतराम से हमें एक दूसरे के क्या रहने की जरूरत है, ताबे रहने की जरूरत है। आगे पालूस रसूल बताएगा कि बीवी को अपने शोहर की ताबेदार इसलिए नहीं होना कि वो खूबसूरत है, इसलिए नहीं कि वो रुपया पैसा कमाता है, इसलिए नहीं कि उसका बोलने का रवैया दुरुस्त नहीं है, इसलिए नहीं कि वो गालियां देता है, इसलिए नहीं कि वो बात बात पर झगड़ा डालता है, इसलिए कि खुदावंद के खौफ से क्या करो, एक दूसरे की ताबेदारी करो। 22वीं आयत में लिखा है, ऐ बीवियों अपने शोहरों की ऐसी ताबिया रहो जैसे खुदावंद की। हम खुदावंद के खौफ को, उसकी ताबेदारी को क्यों मांगते हैं? क्योंकि वो खुदावंद है, वो इज्जत के लायक है, और उसकी इज्जत हमें तब भी करनी है जब हमारी दुआ का जवाब ना मिले। ये बहुत मुश्किल है कि बीवी अपने खामंद की ताबेदार रहे जब खामंद क्या करे, सही बर्दाश्त के साथ ना करे, और खामंद को भी हुक्म दिया गया है कि वो भी अपनी बीवी से शोहरों, 25वीं आयत में, ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की। So, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबिया रहो। खामंद और बीवी को, खामंद को मोहब्बत करने के लिए कहा गया है, बीवी को ताबियादारी करने के लिए कहा गया है। इससे हरगिज मुराद नहीं कि खामंद उसे इस तरह इस्तेमाल करे कि जैसे उसने ठेके पर जमीन ली हो, और बीवी को हरगिज अपने अपने खामंद को जवाब देने की जरूरत नहीं कि जिस तरह वो उसकी कर्जदार हो। तो दोनों को इस गाड़ी के जो पहिए हैं इनको इकट्ठा चलना होगा, तो गाड़ी क्या होगी, जबरदस्त तरीके से चलेगी। सो पालूस रसूल कहता है, और मसीह के खौफ से, मसीह का खौफ क्या है, याद है आपको इम्साल की किताब उसके पहले बाब में, खुदा का खौफ क्या है, मसीह का खौफ क्या है, उससे मोहब्बत करना। अगर मोहब्बत करेंगे तो हम सही खौफ को समझेंगे, जैसे इंसान एक बाप उसकी गालबन पहली कुछ आयात में हमें जिक्र मिलता है कि 7वीं 8वीं आयत में, जैसे कह सकते हैं हम 7वीं आयत में, खुदावन का खौफ इलम का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की क्या करता है, गारत करता है, बेइज्जती करता है। समझदार के सामने खुदा का खौफ क्या है, इलम का शुरू है। हमें खुदा का खौफ, खुदावंद यीशु मसीह की इज्जत, अगर हम यीशु मसीह की इज्जत करते हैं तो वो इज्जत किस तरह नजर आएगी, जब हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से, ताबेदारी से जिंदगी बसर करेंगे। लेकिन बहुत दफा हम ईमानदार कैसा रवैया अपनाते हैं कि खुदा की वफादारी, उस खौफ को क्या करते हैं, भूल कर, अपनी मनमानी करते हैं, करते हैं ना जी, बहुत दफा करते हैं। हमारी जिंदगी आईने की तरह बिल्कुल साफ नजर आ जाती है अगर हम एक दूसरे के साथ हमदर्दी करते हैं, एक दूसरे के साथ भलाई करते हैं, मेहरबानी करते हैं। और जब कोई मेहरबानी करता है तो आखिर में अगर हम उसकी शुक्रगुजारी भी ना करें तो ये क्या है? इससे हमें पता चल जाता है कि फलां बंदा सिर्फ अपने मतलब के लिए था, जब उसका मतलब निकल गया तो उसने किसी किस्म की कोई शुक्रगुजारी का इजहार नहीं किया। बहुत दफा हम ईमानदार होते हुए और मसीह के खौफ से, मसीह का खौफ एक दूसरे से मोहब्बत, मसीह का खौफ एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहना, मसीह का खौफ क्या कहता है, मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबिया रहो, फरमा बरदार, जिसके लिए बहुत दफा ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। पालूस रसूल अपने आप को कहता है खुदावंद यीशु मसीह का बंदा, दूसरे लफ्जों में खुदावंद यीशु मसीह का गुलाम। हम बहुत दफा दुनिया के गुलाम बनना पसंद करते हैं, दुनिया की चीजों के पीछे या ख्वाहिशों के पीछे या फिर खौफ में, लेकिन हम यीशु मसीह को उस तरह अपना दिल नहीं देते जिस तरह वो चाहता है। वो चाहता है हमारे दिल को कि हमारे दिलों पर राज करे। हम ताबेदारी क्यों नहीं करते? क्योंकि अपनी मनमानी करते हैं। हम बाहर क्या ताबेदारी करें, हम बहुत दफा गिरजा घर में ताबेदारी नहीं करते। क्यों नहीं करते? अपनी खुदपरस्ती से, अपने आप को आला जानना। यहां पर लिया लिखा है एक दूसरे के क्या रहे, मसीह के खौफ से ताबेदार रहे, एक खौफ एक दूसरे के, मसीह के खौफ से ताबेदार, फरमाबरदार, एक दूसरे की बात मानना। जिसमें अगर गिरजाघर में तो कलीसियाई निजाम को समझकर उसके तहत अपने आप को ताबे करना कि ये इंतजाम किसकी तरफ से है, खुदा की तरफ से। उस इंतजाम के खुदा के निजाम के मुतहद जिंदगी गुजारना, खामद और बीवी का निजाम खुदा की तरफ से है, उसके ताबेदारी में जिंदगी बसर करना। हमारी मसीही जिंदगी, हमारी मसीही शादीशुदा जिंदगी, हमारे बच्चों की जिंदगी, हमारी कलीसियाई जिंदगी फलदार सिर्फ और सिर्फ इस बात से होगी जब हम मसीही जिंदगी में उन हुक्मों को पूरा करेंगे जो हमें दिए गए हैं। आए चंद एक हुक्मों पर जरा गौर करें कि मसीह के खौफ से हम क्या कर सकते हैं। मेरे साथ देखें इफिसियों 4:2 उसकी दो आयत, इफिसियों 4:2 उसकी दो आयत। ये हुक्म है कलीसियाई हुक्म, जिसे कहते हैं कि एक दूसरे के साथ। ये कलीसिया में सिर्फ कलीसिया ही इस हुक्म को पूरा कर सकती है। ईमानदार की ईमानदारों के साथ ये कर सकते हैं, गैर ईमानदार को ना इसका कोई अजर मिलेगा और ना ही उसे इजाजत है और ना ही वो कर सकता है, क्योंकि ये सब ये हुक्म एक दूसरे का रूह कुद्दस की कुदरत में पूरा होगा। रूह कुद्दस के बगैर हम कुछ भी नहीं, पाक रूह की हदायत के बगैर हमारा कोई भी भला नहीं। 4:2 उसकी दो आयत में लिखा है यानी कमाल फरोतनी, मसीह का खौफ क्या है, कमाल फरोतनी और हिलम के साथ तहम्बल करके एक दूसरे की बर्दाश्त करो, एक दूसरे की बर्दाश्त करो। मुझे बहुत दफा बहुत सी बातों की बर्दाश्त करनी पड़ती है, बहुत दफा आपको बहुत सी बातों की बर्दाश्त करनी पड़ती है, काम की, बच्चों की, पड़ोसियों की, बीवी की, बंदे की, जहां पर काम करते हैं, और बहुत दफा कलीसिया में, बहुत दफा कलीसिया में हम एक दूसरे से चिढ़ खाते हैं, खाते हैं कि नहीं जी, कि फलां बंदे की मैनू आदत, फलां बाजी की मैनू आदत पसंद नहीं, फलां बंदा जो गल करता तो मुंह से थुकता रहा, पसंद नहीं जी, परे हो चलो क्या करें। यानी कमाल फरोतने और हिलम के साथ, मुझे भी पसंद नहीं जब कोई बात करे तो सारा थोकदा मुंह से मेरे उत्ते आ, मुझे खासकर पसंद नहीं है सिगरेट का धुआं। मैं अपने अब्बू के दुआले हो जाता हूं कि मुझे सिगरेट के धुएं से नफरत है। लेकिन क्या करना है, कमाल फरोतनी से, बड़ी हलीमी के साथ, बड़ी नरम मजाजी के साथ, ऐसे तहम्बल के रवैया से, मोहब्बत से एक दूसरे की क्या करनी है, बर्दाश्त करनी है। तो मसीह का खौफ क्या है, एक दूसरे की बर्दाश्त करना। क्या करना, कहें, एक दूसरे की बर्दाश्त करना, एक दूसरे की बर्दाश्त करना। दूसरी बात मेरे साथ देखें, 32वीं आयत, चौथा बाप उसकी 32वीं आयत, एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है ताकि हम एक दूसरे की तामीर का, तरक्की का बायस बन सके। जैसे बच्चे, बहुत दफा पैगाम हो रहा है, ये अपनी कोई ना कोई बात करेंगे या ऐसा काम करेंगे, लड़कियां हो सकती हैं, लड़के हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, तो क्या करनी पड़ती है, बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि अभी सीख रहे हैं, इसलिए इनको हलीमी से, फरोतनी से, प्यार से, मोहब्बत से, रहनमाई से इनकी क्या करनी है, रहनमाई करनी है। तो 32वीं आयत में, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। इसे एक आयत में, एक दूसरे पर मेहरबान, नरम दिल हो, और जिस तरह मसीह ने खुदा ने मसीह में, किस में, मसीह में, मसीह का लफ्ज जहां कहीं भी इस्तेमाल किया गया है, मकसद के लिए किया गया है कि मसा शुदा, जिसके लिए वादा किया गया था कि वो कवारी से पैदा होगा, जिसके लिए वादा किया गया था कि हाँ वो बादशाह होगा, जिसके लिए वादा किया गया था वो यहूदा का बब्बर होगा, जिसके लिए नबूवत थी कि वो सलीब पर जान देगा, जिसके लिए नबूवत थी कि वो कब्र में से जी उठेगा और खुदा के दाहिने तरफ बैठ जाएगा, फिर वापस आएगा, कलीसिया कायम करेगा और बादशाह करेगा, मसीह के नाम में, मसीह में, खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। पहली बात क्या करनी है, बर्दाश्त। क्या करनी है, बर्दाश्त, एक दूसरे की बर्दाश्त करो, सब कहें, एक दूसरे की बर्दाश्त करो, और फिर एक दूसरे के कसूर माफ करो, एक दूसरे के कसूर माफ करो। माफ करना चाहिए या नहीं, करना चाहिए, क्यों, हम माफ किए गए, क्योंकि खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, हमें भी माफ करना चाहिए। नहीं, माफ कर दांगे, नहीं, माफ करना चाहिए, ये हुक्म है। कितनी बारी,
70 बार,
7 के 70 दफा एक दिन में, 7 के 70 दफा एक दिन में, और जब उसे जमा करें तो एक दिन में जमा के हिसाब से कितना बनता है, 490 दफा, कितना, 490 दफा एक दिन से। लेकिन असी एक बारी में माफ कर दें, जे माफ करते हैं तो उसके पीछे साड़ियां शर्तां होंगी। क्या कभी यीशु मसीह ने साड़े को शर्त पूछी, अगे साड़े कभी शर्त रखी, जबूर हुने सी गाया सी बाई, ओ धन जिदे बख्शे गए सब गुनाह, ढेर के गए सारे हो गए सदा, उस सारे गुनाह ने ढक दिते। एक गल जी, खुदावन मैनु माफ कर, खुदावन यीशु मसीह ने यह तो नहीं कहा मेरे लिए पट्ठे वढ़ो, कोई शर्त रखी हो, नहीं, ओदी शर्त की आ, एक ही, खाकसार, खाकसार हलीमी ते फरोतनी ते टुटा हुआ दिल, जिहड़ा कहे कि मैनु बहाल कर। जो साड़ा दिल दौ दरगा होएगा, तकबर ना भरिया, तो फिर खुदा सानू माफ नहीं करेगा। जो असी दौ की तरह, खुदा खुदा मैनू नया रूप दे, मैनू साफ कर, मैनू धो के पाक ते साफ कर, तो खुदावन खुदा की करता वा, माफ करता। खुदावन खुदा ते माफ करता, सवाल यह क्या, क्या असी एक दूसरे नू माफ कर दें, नहीं, असी इंसान हुंदिया होया, इंसानी नफसियात आ, सोच आ, ख्याल आ, तरीका कार आ, इस दुनिया च रह के दुनिया दे सी ज्यादा हम शक्ल बन गए, दुनियावी गल्लां दे विच ज्यादा फस गए, असी माफ करन लगे की करदे आ हिचकिचाने, असी कसूर माफ करन लगे 74 वाली सोचदे आ, कदी दुआ कदी कहिंदे के उहदे लई नहीं सोचिया, माफ करन लगे असी 7400 वाली सोचदे आ कि किन्ने वारी किन्ने की गुनाह माफ करिए, 5-6 माफ कर देने, एक थले रख लिए कर्जे के तौर पर कि जदों टाइम आवे तो उदों याद कराता, 5 माफ किए सी ओ गुनाह नहीं किया माफ दे, और जो तू नुक्कर ते मैनू गली दी ते खड़ो के गालां कढ़ियां सी ओ माफी दे लायक नहीं, याद रखो। बाइबल मुकद्दस कहती आ, यसु मसीह कहता कि हर एक गुनाह की माफी आ, किसी ने ताड़े मूंह थुकया यसु मसीह के मूंह थुकया उन्हें माफ किया, किसी ने ताड़ी दाड़ी पुटी यसु मसीह दे दाड़ी पुटी उन्हें माफ किया, किसी ने ताड़े घसुने मारे यसु मसीह नूं चंडां दी बारिश कर करके उहदा मूंह सोहना ते नूरानी जिहड़ा चेहरा सी उहनूं विगाड़ दिता कि उह पछाण दे विच वी नहीं आउंदा सी, उहने उहनां नूं माफ करता। अगर यसु मसीह कर सकदा ते असीं वी कर सकदे हां, कदों यसु मसीह च, यसु मसीह च होवांगे ते माफ करांगे, नहीं ते फिर अदालतां ठाणे चौंकियां ते लैणा देणा। इस करके कलीसियाई ये हुक्म आ जिहड़े कहिंदे सी आने वाले दिनां दे विच गौर कर रहे हैं एक दूसरे, ये तकरीबन 35-37 हुक्म आ, ना कहिंदे कि तमाम खतूत दे विच, ये सारे कलीसिया दिते गए आ। अगर असीं एक सेहतमंद कलीसिया बनना चाहते हाँ तो हुक्मां ते सानूं गौर करन दी जरूरत आ, अगर नहीं करांगे तो बस ठीक आ, फिर जिवें गड्डा रिड़िया होया उवें रिड़ता ही रहेगा, ਗੱਡੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਲਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ, ਅੱਜ ਦੋ ਹੁਕਮ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਕਿਆ ਕਰੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਕੋ ਬਤਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਤੋੜ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਸੂਰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਵਤ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਵਤ 'ਚ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮਾਫੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਵਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਫੀ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਇਸ ਜਹਾਨ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਫਰ ਬਕਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਫਰ ਬਕਣਾ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ, ਕੁਫਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹਲੇ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ।